सेकेंड क्रंथियंस चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 7 और मुकाशफों की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभोया गया, यानी शैतान का कासद, ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं फूल ना जाऊं। थैंक यू स्लीम, प्लीज बैठिए। आज का हमारा मजमून है दुख जो खुदा की तरफ से, दुख जो खुदा की तरफ से। इसी के ताल्लुक से चंद एक बातें आपके दरमियान में रखना चाहता हूं और चाहूंगा कि हम बहुत सी चीजों को क्लियर करें जो हमारे थियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स हैं सफरिंग्स के ताल्लुक से या मसाइब के ताल्लुक से, उसे जाने और बेहतर तौर पर समझें। पालुस रसूल जो है वो क्रंथस को लिख रहा है और पालुस का मुकाम खुदा और कलिसिया की निगाह में जो है वो अनपैरेलल है। अनपैरेलल का मतलब है बेनजीर है, बेमिसाल है। और जो कुछ उसने किताब मुकद्दस में रकम किया है वो मसीह के साथ गुजारा गया रवायतों, ख्वाब और शागिर्दों से सीखा हुआ वो मटेरियल है जो वो बयान करता है। और बिलखसूस याद रखिए जो पालुस रसूल ने लिखा है वो ख्वाब रोया में पाया गया मटेरियल है। जो कुछ भी पालुस रसूल ने खतूत में लिखा है, हमें मालूम है कि पालुस रसूल को रसूल आजम कहा जाता है। कितनों ने सुना हुआ है कि पालुस जो है ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपोस्टल, वो एक ग्रेटेस्ट अपोस्टल है। तमाम रसूलों में इसे रसूल आजम कहा जाता है और किताब मुकद्दस का बेशतर हिस्सा जो है मोस्ट ऑफ द न्यू टेस्टमेंट वॉज रिटन बाय हिम और उसी ने लिखा है। और ये वो रसूल है जिसने फिजिकली यीशु मसीह के साथ वक्त नहीं गुजारा, मगर ख्वाब रोया में जो कुछ खुदा ने इसे सिखाया है भरपूर सिखाया है और उस तमाम के तमाम काम को उसने खतूत की शक्ल में लिख के कलिसियाओं के हवाला कर दिया। और अगर उसने क्रंथस को लिखा था तो बिल्कुल उसी ने उसने मुझे और आपको भी वही बातें लिखी हैं। बाज़ुकात हम सोचते हैं कि शायद किताब मुकद्दस का जो कुछ हिस्सा ये टाइमली है या इट वॉज designated for a particular time in the history, but ऐसा नहीं है। किताबे मुकद्दस का लिखा हुआ जो है अगर माजी में काम करता था तो हाल में भी काम करता है, और अगर हाल में काम कर रहा है तो ये आने वाले फ्यूचर के लिए भी है। आमीन। और यहां पालुस रसूल बड़ी खूबसूरत बयान जो है वो देता है, लिखता है कि मुकाशफों की ज्यादती के सबब से। अब ये जो लफ्ज है मुकाशफों की ज्यादती, ये अपनी जात में वो तमाम चीजों को खोल देता है जिसकी मैंने बुनियाद रखी है कि पालुस ने मुकाशफाती जो मुआद, मुकाशफाती मटेरियल खुदा से पाया उस तमाम को उसने यहां पर रकम किया और उसने बहुत से थियोलॉजिकल कह लीजिए इश्यूज को सॉल्व किया, बहुत सी चीजों को बयान किया। वो चीजें जो शायद उन 12 रसूलों ने बयान नहीं की वो पालुस रसूल बयान करता है। और आज क्योंकि हम सीखना चाहते हैं दुख जो खुदा की तरफ से है उसके ताल्लुक से, तो यहां पर आपको चंद एक बातें बताना चाहता हूं। आपको मालूम है कि आप परफ्यूम की बॉटल खोलते हैं तो फिर स्मेल आती है, आमीन, फिर आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। अंटिल यू ब्रेक इट, अंटिल यू ओपन इट अप, यू कैन नॉट स्मेल इट। उसका टूटना, उसका खोले जाना जो है वो इसलिए जरूरी है कि हम ना सिर्फ वो खुशबू खुद एंजॉय करें, एक्सपीरियंस करें, बल्कि दूसरे भी उसे एंजॉय करें। आमीन। आप जब तक पीनट का छिलका नहीं उतारते आप पीनट खा नहीं सकते, आमीन, ऐसा ही है। आप जब तक उसे खोलते नहीं आप उसे एंजॉय नहीं कर सकते। जब तक तितली जो है वो कोकून को फाड़ती नहीं है वो उड़ने के काबिल नहीं होती, वो तजर्बा नहीं कर, यानी बात एक्सपीरियंस की है। और तजर्बात जब मुकाशफात के जरिया बयान किए जाएं तो अपनी जात में उत्तम पैगाम लेकर आते हैं। आला पैगाम लेकर आते हैं। अगर मुकाशफात को और तजर्बात को मिला दिया जाए, क्योंकि मुकाशफात और तजर्बात की रोशनी में लिखी गई बातें जो हैं वो मेरे और आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का सबब बनती हैं। आमीन। और यहां पर पालूस रसूल जो है वो लिख रहा है कि मुकाशफों की ज्यादती, यानी ज्यादती का मतलब है कि ग्रेटनेस ऑफ द रेवलेशन, एक्सीडिंगली ग्रेटनेस कह लीजिए कि एक्सीडिंगली ग्रेटनेस ऑफ द रेवलेशन, जितने मुकाशफात है एक्सीडिंगली दिए गए उसे। हमारे यहां एक ख्वाब आ जाए तो वही हमें बड़ा कह लीजिए हमें हायर लेवल्स पे ले जाता है। वी बिगन टू रियलाइज कि हम किसी मुकाम पर हैं। दो रोया, तीन रोया, चार ख्वाब, मगर यहां पालूस रसूल मुकाशफों की ज्यादती का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है, यानी इतनी रोए हैं, इतने ख्वाब कि इससे संभाले नहीं जा रहे, इससे संभाले नहीं जा रहे। और खुदा जो है वो सावरन है। आमीन। He is sovereign God and He knows how to control His people. He knows how to keep them in His control. और पालूस को जितने उसने मुकाशफात दिए ना, उसके साथ साथ उसने ये भी जो है वो अपने हाथ में रखा है कि इसे कंट्रोल कैसे करना है, क्योंकि इस बदन में, इस जिस्म में जो करप्टेड है, ये किसी भी वक्त मुझे और आपको उस राह पर ले निकलता है जो खुदा का राह नहीं है। और फिर खुदा अपने रास्ता पर रखने के लिए, अपनी डगर पर कायम रखने के लिए फिर किसी ना किसी को इस्तेमाल करता है, ताकि मैं और आप उस डगर पर रहें जो उसकी तरफ से अपॉइंटेड है। और फिर खुदा हमेशा यह चाहता है कि हमारा तकिया जो है अल्टीमेटली उसकी जात पर हो। क्यों मैं बारहा इस बात का बयान करता हूं, क्यों आपने मुझे यह बारहा सुना यह कहते हुए कि हम इंडिपेंडेंटली रहने के लिए पैदा ही नहीं किए गए, खुदा के प्लान का हिस्सा ही नहीं है आजाद जिंदगी। और फिर इंडिपेंडेंट ऑफ गॉड, खुदा से आजाद जिंदगी खुदा के मंसूबा का हिस्सा ही नहीं है। और खुदा, जैसे हमने एक आम लफ्ज सुना हुआ है सेल्फ सफिशिएंसी का, खुद कफील होने का, यह लफ्ज जो है यह आम है, अकाउंट्स की लैंग्वेज में हम इसे बोलते हैं कि यह लफ्ज आम हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फ सफिशिएंसी का, खुद कफील होने का, कि हमें खुद कफील होना चाहिए। खुद कफील होने का मतलब समझते हैं, खुद कफील होने का मतलब कि हम अपनी कफालत खुद कर सकें, ठीक। मगर यहां पर जो नुक्ता काबिले गौर है सेल्फ सफिशिएंसी को लेके, अगर आपकी सेल्फ सफिशिएंसी जो है वो आहिस्ता 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 आपके भरोसे को आप पर ही बढ़ाती जाएगी, आपकी आपके फेथ को, ईमान को आप ही पर बढ़ाती जाएगी, तो खुदा आहिस्ता आहिस्ता इक्वेशन से एक्सक्लूड होता जाएगा। और खुदा देख रहा होता है, ही सीज एवरीथिंग, उसे मालूम है कि जो इक्वेशन उसने लाइफ की क्रिएट की है वो उसका एक फैक्टर रहना चाहता है, वो एक कह लीजिए की फैक्टर प्ले, जो रोल प्ले करना चाहता है उस इक्वेशन का। और अगर मैं और आप खुद कफालत की निगाह में या खुद कफालत के पर्सपेक्टिव में सेल्फ सफिशिएंसी की बात करते करते एक ऐसी जगह पर आ जाए जहां पर आहिस्ता 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 मेरा एतकाद मेरे मालूमता पर, मेरा एतकाद मेरी ख्वाब रोया पर, मेरा एतकाद जो है वो मेरे काम कारोबार पर, मेरा एतकाद मेरे इल्म पर, मेरा एतकाद मेरे तजर्बात पर, वही जगह है जहां पर खुदा फिर किसी ना किसी चीज को इस्तेमाल करता है, झंझोड़ता है मुझे और आपको, वो झंझोड़ता है कि स्टॉप डूइंग इट। क्यों? क्योंकि तू मुझे जो है वो रिप्लेस कर रहा है उन चीजों के साथ जो मैंने ही तुम्हें दी हुई हैं। तो पालूस क्या कह रहा है, पालूस का यह कहना कि मुकाशफात की ज्यादती के सबब से, किसकी ज्यादती के सबब से, मुकाशफात की ज्यादती के सबब से मेरे जिस्म में एक कांटा चुभोया गया है, ए कॉर्न इज गिवन टू मी, गिवन इन टू माई फ्लैश, और दिया क्या कांटा। अब ये जो कांटे की डिटेल है नो वन नोज अबाउट इट कि यह कांटा क्या, वी कैन अज्यूम इट कि ये उसकी सिकनेस हो सकती है, कोई टेम्पटेशन है, बट नो वन एग्जैक्टली नो अबाउट इट व्हाट काइंड ऑफ पॉन इट वाज, किसी को पता नहीं है। बट ये कोई ऐसी चीज है जो पालूस के लिए इंतहाई गम का बाइस है, इंतहाई तकलीफ का बाइस है, इंतहाई दुख का बाइस है, और ये सफरिंग से गुजर रहा है। बाज़ुकात हमें खुदा बहुत कुछ देता है और जो बहुत कुछ दे रहा होता है वो उसका हिसाब भी रख रहा होता है, और जिसे वो दे रहा होता है वो उसका हिसाब भी रख रहा होता है। हम समझते हैं कि I've been given so much of God, but याद रखिए जिसने आपको अपना बहुत बहुतात में दिया हुआ है वो मेरा और आपका और उस दिए हुए का भी हिसाब रख रहा होता है। अब खुदा चाहता क्या था, लिखा है मुकाशफों की ज्यादती के बाइस मेरे फूल जाने के अंदेशा से, क्या लफ्ज इस्तेमाल किया गया, मेरे फूल जाने के अंदेशा से। ये फूल जाना क्या है, कोई बता सकता है कि फूल जाना क्या है? या प्राइड। सो इन ऑर्डर टू कीप मी फ्रॉम बिकमिंग कंसीटेड, बिकमिंग प्राइडफुल, इन ऑर्डर टू कीप मी फ्रॉम बिकमिंग प्राइडफुल, वो क्या कर रहा है, खुदा क्या कर रहा है, एक कांटा चबो रहा है। चबो कौन रहा है, खुदा चबो रहा है। ये किसी शख्स का काम नहीं है, किसी दूसरे रसूल का काम नहीं है। पीटर डिड नॉट डू इट, मैथ्यू डिडंट डू इट, नन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ दैट टाइम डिड एनीथिंग लाइक दैट, बट पॉल इज द वन हु इज गेटिंग अफ्लिक्टेड बाय गॉड एंड गॉड अलोन। और बाज़ुकात हम अपनी सफरिंग्स का सबब लोगों को ठहराना शुरू कर देते हैं। हम कहने हैं इट्स ऑल बिकॉज ऑफ Rabab, it's all because of Jamshed, it's all because of my wife, my husband, my brother, my sister. It's not like that. All of your sufferings, ये जितनी भी एक ईमानदार की suffering है वो उसे analyze करे कि ये sufferings जो है ये खुदा की तरफ से है या लोगों की तरफ से है। और Paulus discovered it handsomely and then he made it an example for us. और क्या कह रहा है, मुकाशफात की ज्यादती। और ये मुकाशफात की ज्यादती को आप रिप्लेस कर सकते हैं हर किसी चीज की ज्यादती के बाइस। जब आपको बहुत मिलता है, इल्म हो जाए बहुत हो जाए, आपको रुपया में ऐसा मिले बहुत मिल जाए, आपको काम कारोबार की ब्लेसिंग्स मिलना शुरू हो जाए, जहां पर आप एक ऐसा क्या लीजिए कैसे बिल्डिंग क्रिएट करना शुरू कर दें जहां पर आप यह सोचना शुरू कर दें कि आई एम सेल्फ सफिशिएंट नाउ, I'm खुद कफील, I can do things on my own. तो फिर खुदा क्या करता है, खुदा मुझे एक रिमाइंडर देता है, खुदा आपको एक रिमाइंडर देता है। और वो रिमाइंडर किस सूरत में आएगा, कांटे की शक्ल में, सफरिंग्स की शुरू किसी भी शक्ल में हो सकता है। अब ये कांटा आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ टॉन इट वॉज, मुझे मालूम नहीं है क्योंकि किताब मुकदस इसकी वजाहत नहीं करती। बहुत से स्कॉलर्स कहते हैं कि पालूस सिख था, बीमार था, मेदे की बीमारी थी उसे और वो उससे ठीक नहीं हो रहा था, तो गालिब इम्कान है कि यही वो कांटा था। मगर ये क्या अजम्पशन है, क्या सराई है जिसकी बुनियाद किताबे मुकद्दस फराहम नहीं करती। और ना पालूस ने खुद कहा है कि ये वो कांटा है जो खुदा ने मुझे छुपोया। अब आप थोड़ी देर के लिए सोचिएगा जहां मैं आपको लेकर जाना चाह रहा हूं। खुदा मुसाइब में भी मकसद रखता है, खुदा तकालीफ में भी एक ग्रेटर पर्पस को रिवील करता है। हम सोचते हैं कि ये हुआ पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है, बट देर इज ए ग्रेटर पर्पस जो खुदा अनलीश करता है, खुदा उसे रिवील करता है अपने लोगों की स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। दैट्स द पर्पस। और फिर खुदा किसे इस्तेमाल कर रहा है, कांटे को, है ना, सफरिंग्स को, नफे को घाटे को किसे इस्तेमाल करा, यू हैव टू एनालाइज इट। और आगे जाके देखिए कि आगे पालूस ने जो बात बयान की है, इट कैन बी ए शॉकिंग थिंग फॉर अस। क्या लिखता है सुनिएगा, मुकाशफात की ज्यादती के बायस मेरे फूल जाने के अंदेशा से मेरे जिस्म में कांटा चुभ हो गया। यानी आगे उसकी एक्सप्लेनेशन है, यानी अब वो जो कांटा चुभ होया गया है उसे वो एक्सप्लेन कर रहा है, यानी मींस के शैतान का कासिद। बोलिएगा क्या लिखा, मैसेंजर ऑफ सैटन, यानी सैटन्स मैसेंजर। अब खुदा वो जिसे कांटा कह रहा है उस कांटे की पालूस रसूल एक्सप्लेनेशन दे रहा है, और एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, यानी शैतान का कासिद मेरे मुक्के मारे। किसका कासिद मुझे मुक्के मारे, किसका कासिद मुझे मुक्के मारे। अब आप सोचिए खुदा यह सफरिंग किसकी तरफ से है, खुदा की तरफ से। मुकाशफात किसकी तरफ से थे, खुदा की तरफ से। रोयाएं किसकी तरफ से, खुदा की तरफ से। और रसूल किसकी तरफ से, खुदा की तरफ से। और किसके लिए, खुदा के लिए, खुदा की बादशाही के लिए। और महा यहां पर मुकाशफात की ज्यादती के सबब से खुदा को मालूम है कि पालूस जो है इसमें टेंडेंसी आ रही है किसकी, फूल जाने की, किसकी फूल जाने की। इसमें तो कब्र पैदा हो रहा है, इसमें घमंड पैदा हो रहा है, और खुदा सेंस कर रहा है। हो सकता है लोग भी नीचे से सेंस कर रहे हो, बट ही इज द फर्स्ट वन हु बिगेन टू सेंस इट कि समथिंग ड्रेस्टिकली रॉन्ग इज गोइंग टू हैपन विद पॉल। सो आई हैव टू कीप इन कंट्रोल, मुझे इसे कंट्रोल में करना है, इससे पहले कि ये डिजास्टर बन जाए, इससे पहले कि ये तबाही बन जाए अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, इसे मैंने कंट्रोल करना है। मेरी बात समझ रहे हैं, खुदा आपको एक बड़ा डिजास्टर बनने से कंट्रोल करता है, खुदा आपको एक बड़ी तबाही से बचाता है, ताकि सिर्फ आप खुद तबाह ना हो दूसरों को भी तबाह ना होने दें। तो पालूस की उस मुकाशफात की ज्यादती के पीछे जिसे टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, सैटन्स मैसेंजर। अब आपसे कहा जाए कि खुदा जो है वो अबलीस को इस्तेमाल कर रहा है मुझे और आपको ठीक करने के लिए, तो आप क्या कहेंगे, नहीं 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 ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ऐसा नहीं कर सकता। खुदा सावरेन है, सावरेन का मतलब है कि ही कैन डू एनीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। अब इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देता हूं आपकी कह लीजिए तसल्ली के लिए। खुदा का हट जाना अबलीस को अलाउ करना है बेसिकली। अय्यूब के मामला में क्या था, अबलीस ने कहा कि तू जरा हट जा, तू अपना हाथ उठा, तो फिर देख अय्यूब क्या करेगा, तेरा इनकार करेगा, तेरे खिलाफ कुफर बकेगा। सो खुदा का हटना, अपना हाथ उठा लेना, हेज ऑफ प्रोटेक्शन को रिमूव करना, अबलीस को मौका देना कि गो एंड चेक हिम नाउ। तो ये जो मैसेंजर है अबलीस का, इसने आके पालूस को पता कितना तंग किया है, कितना उसे तकलीफ में से गुजारा है, और क्यों, ताकि वो फूल ना जाए, और फूले ना तो फिर क्या हो, आजीज हो जाए। क्या हो जाए, वन ऑफ द बिगेस्ट सिन इन द वर्ल्ड इज प्राइड। मुखालिफ इब्लीस क्यों गिराया गया नीचे, घमंड और प्राइड के सबब से। लिखा कि उन्होंने उसमें घुमंड भर दिया, किन्होंने, उसके इर्द गिर्द कंपेनियंस ने, फरिश्तों ने उसमें घुमंड भरा, और खुदा ने उसे उसके मुकाम से नीचे उसे गिरा दिया। खुदा मेरी और आपकी दुरुस्ती चाहता है, खुदा मेरी और आपकी तरबियत चाहता है, खुदा कलीसिया को पनपता हुआ देखना चाहता है, खुदा चाहता है कि खानदान बढ़े, खुदा चाहता है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ हो। बट स्पिरिचुअल ग्रोथ के साथ साथ जो कुछ खुदा आपको देता है उसमें खुदा मेरा और आपका हिसाब मुसलसल रखता है। मैं और आप शायद एक दूसरे का मुसलसल हिसाब नहीं रख सकते, मगर खुदा बड़ा गुड बुक कीपर है, गुड बुक कीपर। उसके पास एक एक डिटेल है, एक एक सेकंड की, एक एक सेकंड के फ्रैक्शंस की भी, कि मैं किस तरह से कैसे और क्या सोचता हूं। और पालूस का उसे मालूम था कि ही इज इंक्लाइन टू बिकम मोर एंड मोर कंसीटेड, सो आई हैव टू कंट्रोल हिम। इसे क्या करना, कंट्रोल करना है। इसमें सेल्फ सफिशिएंसी, खुद कफालत, मुकाशफात पर इसका इन्हसार, ये ज्यादतियां हैं, और ये दूसरों को आहिस्ता 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 क्या करेगा, हकारत की निगाह से देखेगा। तो इसे क्या करो, कंट्रोल करो। और पालू से इतराफ करता है, वो ये नहीं कह रहा कि खुदा तूने बहुत बुरा किया है, उसे मालूम है कि मैं कमबख्त आदमी हूं, हाउ अनफॉर्चुनेट आई एम हु विल डिलीवर मी फ्रॉम माई रेचेड बॉडी, मुझे इस रेचेड बॉडी से कौन छुड़ाएगा, दिस इज व्हाट ही सेड, मैं रेच्ड हूं, मैं तबाह हूं, मैं कमबख्त हूं। तो ये बदन की हालत है कि अनटिल यू कंट्रोल इट, ये आपको क्या करेगा, घुमंड, तकब्बुर, हसद, बोगस्त, फिरके, जुदाइयां, बिदतें, नशाबाजी, नाच रंग, हर उस काम की तरफ लेकर जाएगा जो इसमें बसा हुआ है। और खुदा कंट्रोल करना चाह रहा था, और अगर पालूस का ये दुख है तो खुदा की तरफ से है, और खुदा की तरफ से बगैर वजह नहीं था बल्कि सबब के साथ था। और सबब क्या है, खुदा उसे घुमंड से बचा रहा था, उसे मालूम था कि घुमंड जो है ये जवाल की तरफ लेकर जाता है, किसकी तरफ लेकर जाता है, जवाल की। किताब मुकद्दस से इम्साल की किताब में लिखा हुआ है कि जवाल से पहले घुमंड है, जवाल से पहले घुमंड है, और सरफराजी से पहले आजजी, सरफराजी से पहले आजजी, और खुदा इसे आजजी की हालत में रखना और देखना चाहता है। और बाज़ुकात कलीसियाई रानुमाओं का, कलीसियाई लोगों का भी यही हाल है। मैंने अपनी खिदमत के दौरान बहुत से लोगों को बाबरकत देखा है और स्पिरिचुअली बड़े स्ट्रांग देखा है, बट जहां पर आहिस्ता 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 हम अपनी जात पर, अपनी नेमतों पर, अपने टैलेंट्स पे, अपनी तालीम पे, अपने तजर्बात पर इन्हसार करके अपनी बादशाहत बनाना शुरू करते हैं, वहीं पर खुदा मुदाखलत करता है और फिर कांटा ऐसा चुभ होता है जिससे रिकवरी भी मुश्किल हो जाती है। मगर पालूस की रिकवरी है क्योंकि पालूस एतराफ कर रहा है। और ये देखे दो तरह की हालतों का एक ही बार तजर्बा करता है। आप 12वें चैप्टर को शुरू से पढ़ें तो लिखा है, मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं कि वो यकायक तीसरे आसमान पर उठा लिया गया। आपने पढ़ा, आपने सुना कि पालूस रसूल क्या कह रहा है, सुनिएगा 12वां चैप्टर में आपके लिए पढ़ता हूं, 12वें चैप्टर की तीसरी आयत से, और मैं ये भी जानता हूं कि उस शख्स ने बदन समेत या बगैर बदन के, ये मुझे मालूम नहीं है, खुदा को मालूम है, यकायक फिरदौस में पहुंच गया। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं जो 14 वर्ष हुए कि यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। मसीह में एक शख्स को जानता, वो अपने ताल्लुक से कह रहा है कि मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं कि यकायक वो तीसरे आसमान पर उठा लिया गया 14 साल पहले। और फिर आहिस्ता 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 चलता 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 वो ये बात लिख रहा है कि मुझे मुकाशफात की ज्यादती के सबब से एक कांटा चुभोया गया। अब ये 14 साल पहले का वाकया बयान कर रहा है और 14 साल बाद आके वो ये जो है अपने इस एक्सपीरियंस को भी बयान कर रहा है कि मैं मुझे ये कांटा चुभोया गया, यानी कितनी देर पहले कांटे का उसने तजर्बा करना शुरू किया। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि मुकाशफात की इतनी ज्यादती, इतना भरपूर खुदा उसे ब्लेस कर रहा था, मगर उसके साथ साथ खुदा ने उसे एक कांटा ऐसा चुभोया कि वो कंट्रोल में रहे, और ये 14 साल पहले की बात है, यानी वो कांटा 14 years ago उसे जो है वो दिया गया, दुख जो है 14 साल पहले उसे दिया गया, ताकि वो जब खुदा उसे कुछ दे तो उसे अंदाजा हो कि ही इज स्टिल ह्यूमन, वो अभी भी इंसान है, वो खुदा नहीं है। इसे कंट्रोल, क्योंकि जो कुछ खुदा ने पालूस को दे दिया था वो किसी भी शख्स को खुदा बना सकता था, किसी भी शख्स को खुदा बना सकता था, और पालूस को कंट्रोल करना जो था ये खुदा के लिए इंतहाई जरूरी था। और खुदा इसी तरह से ईमानदारों को भी कंट्रोल करता है, संभालता है, खुदा संभालता है आपको, तकलीफ दे के, दुख दे के, आपको मसाइल में से, मुसीबतों में से, कमियों में से, घाटों में से गुजार के खुदा करता है कंट्रोल। यह स्वभाव था उसका। और फिर किसे इस्तेमाल करता है? अबलीस को, उसके कासदों को, उसके कासदों को इस्तेमाल करता है, क्योंकि नाउ मैं स्टेप बैक करूंगा, गो एंड डू योर जॉब। क्या अबलीस के कासद ने, शैतान के कासद ने मुझे क्या कही है? मुक्के मारे हैं। तो फिर वो खुदा से जब वो दरख्वास्तें भी करता है, सुनिए क्या कह रहा लिखा है, यानी शैतान का कासद ताकि मेरे मुक्के मारे। क्या मारे? इसका मतलब है उसे पता है कि अगर मुझे मार पड़ भी रही है ना तो खुदा की तरफ से पड़ रही है। आई एम ओके विद दैट, है ना। अगर मुझे मार पड़ रही है तो किससे पड़ रही है? खुदा से पड़ रही है। तो अब फिर वो इंसानों को ब्लेम देना नहीं शुरू करेगा, वो किसी रसूल की तरफ नहीं जाएगा, वो किसी जमीनी शख्स की तलाश में नहीं जाएगा कि उसे टारगेट करे और अपना गुस्सा उस पर निकाले। ही इज नॉट गोना डू दैट। उसे मालूम है, उसे यह भी मुकाशवा मिला हुआ है कि बेटा मैं ही हूं जो सब कुछ कर रहा हूं। सुनिए क्या लिखा, क्या कह रहा है लिखा, यानी शैतान का कासिद ताकि मेरे मुक्के मारे और मैं भूल ना जाऊं, और मैं भूल ना जाऊं। आज कौन है जो इस बात का एतराफ कर रहा है कि मुझे खुदा की तरफ से मार पड़ रही है, खुदा मुझे संभालना चाह रहा है, खुदा मुझे जो है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। ये प्रोटेक्शन थी उसकी, ये प्रोटेक्शन थी खुदा की। आगे लिखा, इसके बारे में मैंने तीन बार खुदावन से इल्तमास किया कि ये मुझसे दूर हो जाए। क्या? ये जो कांटा मुझे चबोया गया है, मैंने 3 times आई वेंट इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड आई प्लीडेड विद हिम, आई सेड गॉड टेक इट अवे, टेक इट अवे। 3 times मैं इसे याद है कि मैंने 3 times खुदा से ये कहा है। हम तो हर बार, मेरे तरह का आदमी होता तो हर वेले ही कहता रहता खुदावन जान छुड़ा, खुदावन जान छुड़ा, खुदावन जान छुड़ा, मगर पर्टिकुलरली इसने क्या कहा है, 3 times आई वेंट इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड आई प्लीडेड विद हिम, आई सेड गॉड कैस्ट इट आउट, टेक इट अवे, इसे दूर कर मुझसे। मगर जवाब क्या था? अगर किसी दुख का सबब खुदा और खुदा का मकसद है तो जवाब और होगा, हीलिंग नहीं होगा। फिर आपको उस दुख के साथ जीना पड़ेगा, फिर आपको तकलीफ के साथ जीना पड़ेगा, फिर आपको उस बड़े खुदा के मकसद को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा जो खुदा मेरी और आपकी लाइफ में रखता है। क्या लिखा जी? लिखा कि इसके बारे में मैंने 3 times खुदा से इल्तिमास किया कि यह मुझसे दूर हो जाए, मगर उसने मुझसे कहा, ही रिस्पॉन्डेड लाइक दैट, उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। सो क्या मतलब? खुदा क्या कहना चाह रहा था? बेटा ये कांटा नहीं जाने वाला, बस इस कांटे के चुभोने के इस अमल में भी मैं तेरे साथ हूं, मेरा फजल तेरे साथ है, परसवेरेंस तुझे फेथ की देगा, तुझे संभाले रखेगा, मगर कांटा नहीं जाएगा, ये दुख तुझसे दूर नहीं होने वाला। इसलिए 14 years के बाद वो ये बयान कर रहा है, लिखा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। किस में पूरी होती है? हम बहुत बड़ा अपने आप को बनाएंगे, गॉड इज नॉट गोइंग टू गेट ग्लोरी, खुदा को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते, खुदा मेरी और आपकी कमजोरियों में ग्लोरीफाई होता है। क्यों? क्योंकि उसकी कुदरत मेरी और आपकी कमजोरियों में जाहिर होती है। हम स्मार्ट हैं, हमारी स्मार्टनेस में खुदा जलाल नहीं पाता। क्यों? क्योंकि हमारा हमारा एतकाद हमारी स्मार्टनेस पे होता है। हम समझते हैं कि आई एम सो स्मार्ट, आई कैन डू एनीथिंग, बट ऐसा नहीं है। यू कैन डू एनी एंड एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट, नॉट थ्रू योर स्मार्टनेस। स्मार्टनेस से नहीं है, खुदा की कुदरत के जरिया से। क्योंकि खुदा एक बड़ी बारीकी से सब कुछ देखता है, उससे मालूम है कि मेरा हल्का सा भी एतकाद मेरी स्मार्टनेस पे गया तो वो रिप्लेस हो गया। और खुदा ऐसा नहीं चाहना चाहेगा, कभी नहीं चाहेगा, विल नेवर लेट इट हैपन। इसलिए आप कामयाब होना चाहते हैं तो आजजी को कभी ना छोड़िए। अपनी जो ह्यूमिलिटी है इसे हमेशा एक्सरसाइज करें. क्यों? क्योंकि ये एक्सरसाइज करना पड़ती है और पालूस ने इसे एक्सरसाइज किया खुदा के फजल के जरिया से. फिर इसे ठीक है, मेरा फजल तेरे लिए मेरा फजल काफी है. इसलिए सेल्फ सफिशिएंसी के कॉन्सेप्ट को अलग कर, मुझ पर डिपेंड कर, मुझ पर इन्हसार कर. ये जो रोयाएं हैं, विजन्स एंड ड्रीम्स हैं, ये मेरी तरफ से हैं, मैं तुम्हें दे रहा हूं. सो मेरी तरफ देख, किसी शख्स की तरफ ना देख. ये इस बात पर शेखी ना बिगाड़ कि तुझे रोयाएं मिली हैं और दूसरों को नीचा दिखाए इसके सबब से. हरगिज़ ऐसा ना कर. क्यों? क्योंकि जब मैं शेखी बिगाड़ता हूं तो दूसरों को नीचा दिखाता हूं. जब मैं शेखी मारूंगा तो मैं दूसरों को नीचा दिखाना चाहता हूं. तो इसलिए खुदा नहीं चाहता कि आपका कोई भी अमल जिसमें आप खुदा की दी हुई नेमत को इस्तेमाल करके दूसरों को नीचा दिखाएं, खुदा ऐसा नहीं चाहेगा. इसलिए क्या करें? अपनी नेमतों को, अपनी बरकतों को आजजी से इस्तेमाल करें. आपके पास पैसा है, रुपया है, हिकमत है, इलम है, तजर्बात है, कुछ भी क्यों नहीं है, यूज इट फॉर द सेक ऑफ गॉड्स ग्लोरी. यही कहें, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने दिया है, खुदावन तेरा शुक्र हो तूने दिया है, खुदावन तेरे फजल के सबब से है. क्या लिखा है उसने? कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है. तू किस बात पर एतकाद कर रहा है? तू किस बात पर भरोसा कर रहा है? अपने मुकाशफात पर जो मैंने तुम्हें दिए. तू फजल की तरफ देख. अगर यह कांटा चुभोया गया तो तेरी दुरुस्ती के लिए है, क्योंकि मुझे मालूम है कि तू कहां जाने वाला था. मेरा, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है. क्या होती है? एक तो होता है कि खुदा की कुदरत जाहिर होती है, ऑब्वियसली जाहिर होती है, बट यहां पर लिखा कि पूरी होती है उसकी कुदरत. किस में? कमजोरी में. बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा. किस बात पर फख्र करूंगा? ना मैं मुकाशफात की ज्यादती पर फख्र करूंगा, ना अपने इल्म की बहतात पर फख्र करूंगा, ना अपने धन दौलत पर फख्र करूंगा, ना अपने तजर्बात पर फख्र करूंगा, बल्कि अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा, क्योंकि कमजोरी में खुदा जलाल पाता है. अब उसका फख्र क्या है? कमजोरी. क्यों? क्योंकि कमजोरी में खुदा ग्लोरीफाई किया जाता है. आमीन. तो ईमानदार को खुदा क्या चाहता है? कि वो अपनी कमजोरी में खुदा को जलाल दे. और इस, अब इसकी सफरिंग्स के पीछे कौन है? खुदा है. और खुदा का पर्पस क्या है? स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल ग्रोथ. आप किसी भी घाटे का तजुर्बा कर रहे हैं, किसी भी बीमारी का तजुर्बा कर रहे हैं, किसी भी नुकसान का तजुर्बा कर रहे हैं, किसी भी तरह का हादसा है जिसका तजुर्बा कर रहे हैं, तो समझिए खुदा और खुदा की कुदरत को. कौन है जो पीछे इसके काम कर रहा है? लोगों की तलाश ना करें, पहले खुदा की तलाश करें. खुदा से पूछें, खुदावंद ये क्या माजरा है, क्या मामला, क्या हुआ चाहता है मेरे साथ? फिर आपको जवाब मिलेगा, मेरा फजल ही तेरे लिए. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि जो दुख एक उनकी लाइफ में आया, सैकड़ों जगहों पर उन्होंने दुआएं की हैं, करवाई हैं, बट इट नेवर गोज अवे. क्यों? कुछ दुख हमेशा खुदा ने हमारे साथ रखे होते हैं, मुझे और आपको संभालने के लिए, क्योंकि वो मेरी बातनी हालत को मुझसे ज्यादा जानता है, वो मुझे मुझसे ज्यादा जानता है. इसलिए कुछ चीजें हमेशा खुदा आपके साथ रखेगा. ऑलवेज रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर. इसीलिए तो पौलुस रसूल ने कहा, हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं. रोमियो को लिखते हुए क्या कहता है? हाय मैं कैसा कमबख्त आदमी हूं, मुझे मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा? कौन छुड़ाएगा मुझे मौत के बदन से? इस मौत के बदन से खुदा छुड़ाएगा ऑब्वियसली, मगर वो इसे मौत का बदन कहता है और खुद को कम बख्त कहता है. कम बख्त का मतलब जिसके बख्त कम हो, अनफॉर्चुनेट हो, जिसे हम आम लफ्जों में कहते हैं कि अनलकी है, तो वो अपने आप को अनफॉर्चुनेट कहता है कि कितना अनफॉर्चुनेट हूं मैं कि मुझे इस मौत के बदन से कौन छुड़ाएगा. क्यों? क्योंकि जिस नेकी का मैं इरादा करता हूं वो मुझसे होती ही नहीं है, और जिस बदी का मैं इरादा नहीं करता वो मुझसे हो जाती है. इसलिए अब करने वाला मैं ना रहा, बल्कि गुनाह की शरीयत है जो मुझ में बसी हुई है। इसलिए खुदा को मालूम है कि पालूस के बदन में गुनाह की शरीयत है, इसी तरह मुझ में, आप में, हम में से हर एक पर, हर एक में गुनाह की शरीयत मौजूद है और वो काम करती है और खुदा उसे कंट्रोल करना चाहता है। इसलिए खुदा फिर संभालता है दुखों के जरिए से। तक जब मुझे खुदा नेकी रास्ती और बरकतों से खुदा की मुझे समझ ना आए तो खुदा फिर दुखों से समझाता है, फिर समझ आती है। आपने हमेशा जरूरतमंद को खुदा की हुजूरी में आते हुए देखा होगा, हमें जरूरतमंद खुदा की हुजूरी में आता। आप में से हर एक, हम सब जरूरतमंद है खुदा के, हम हाजतमंद है खुदा के। वो जिसके 12 बस से खून जारी था वो दौड़कर किसके पास गई है? यीशु मसीह के पास गई। शी ट्राइड एवरीथिंग, शी ट्राइड एवरी, कह लीजिए डॉक्टर, शी वेंट एवरीवेयर, बट एट द एंड ऑफ द डे शी हैड टू कम टू जीसस, उसे यीशु के पास आना पड़ा। और इससे पहले अगर वो ट्राई करती तो शी कुड हैव बीन डिलीवर्ड। मगर क्या था, जब हम खुदावंद के पास आते हैं तो अपनी जरूरत लेकर आते हैं। वो रूहानी जरूरियात हो सकती हैं, वो जिस्मानी जरूरियात हो सकती हैं, वो तालीमी जरूरियात हो सकती हैं, और खुदा उन्हें एनालाइज करता है और उसे मालूम है कि पालूस को अब किस चीज की जरूरत है। इस दुख और तकलीफ में तो उसने सदा रहना है, उसकी दुआओं का जवाब नहीं आ रहा। आपने देखा होगा बहुत सी दुआएं आपने की होंगी, बहुत से मामलात में कुछ ऐसी दुआएं हैं जो रुक जाती हैं, खुदा विल नेवर आंसर देम, क्योंकि उसमें खुदा का अपना पर्पस है। सम ऑफ योर प्रेयर्स विल रिमेन अनआंसर्ड, जवाब नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है। और जिसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है, व्हाई वुड ही डू इट? और उसमें खुदा फिर क्या कहता है, आप दुआएं करें, यू हैव अ राइट टू डू इट, बट जब आपको उसका जवाब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं मिलता तो फिर खुदा आपके लिए फजल जारी करता है कि बेटा इस तकलीफ में तू जिंदा रह सकता, खुदकुशी नहीं करेगा। समझ रहे हैं मेरी बात? लोग बाजुकात इतने दुख में होते, इतनी तकलीफ में होते हैं, दे कमिट सुसाइड। क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास फजल नहीं है उस दुख में उन्हें संभालने के लिए। वो खुदकुशी करेंगे, खुद को हलाक करेंगे, खुद के गले काट लेंगे, फांसी लेंगे, कुछ ना कुछ, दे विल डू एनीथिंग टू गेट आउट ऑफ दिस बॉडी। क्यों? क्योंकि वहां पर फजल काम नहीं कर रहा। और जहां पर फजल काम कर रहा होगा वो आपको दुख में भी क्या करेगा, दुख रहेगा, संभालेगा जरूर। आमीन। आप तकलीफ में से गुजरेंगे मगर आपको खुदा मौत की तरफ या ऐसे इकदाम करने नहीं देगा जिससे आपकी हलाकत हो जाए। क्यों? क्योंकि वहां पर फजल गालिब आएगा। और आज जो कुछ भी हैं आप, याद रखिए, जो कुछ भी मैं हूं, जो कुछ भी खुदा के लोग हैं, वो फजल की बदौलत है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेस। और ग्रेस सिर्फ ये नहीं है कि अनकंडीशनल लव ऑफ गॉड, सिर्फ ये नहीं है। ग्रेस तो बड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म में आप इसे बयान करें तो यहां पर क्या है ग्रेस? क्या है? सिर्फ अनकंडीशनल लव है? यहां तो मुसीबतों में साथ है ग्रेस। जिस चीज को आप डिजर्व नहीं करते वो भी आपको मिल रही हो, जिस चीज ने आपको गलबा देना है वो भी आपको मिल रही हो, और वो ग्रेस है, वो फजल है खुदा का। फजल को, हाँ, ये जो ग्रेस है इसे कहते हैं एनेबलिंग ग्रेस, एनेबलिंग ग्रेस। वो फजल जो आपको इस अहल कर दे कि आप दुखों में भी कायम रहें, एनेबलिंग ग्रेस है। बहुत से लोगों को आपने बर्गजीदगी से बरगश्ता होते हुए देखा हुआ है। बरगश्ता क्या है? बैकस्लाइड कर जाते हैं। बैकस्लाइड कौन करता है? जो दुखों को, मुसीबतों को स्टैंड नहीं कर सकता वो बैकस्लाइड करेगा, खुदा का इनकार करता है। और जब फजल साथ होगा तो वो उनके सामने खड़ा रहेगा मुसीबतों में। आमीन। गले कट जाएंगे, विल रिमेन फेथफुल। आमीन। मौत आएगी, विल स्टे फेथफुल। और वो फजल है जो आपको ये सब कुछ करने के अहल और काबिल करता है। हम कहते हैं कि वो शहीद हो गया, वो बड़ा स्ट्रांग था। वो बड़ा स्ट्रांग इसलिए था क्योंकि खुदा का फजल उसके साथ था। और एज लॉन्ग एज यू हैव ग्रेस ऑफ गॉड, यू विल स्टे फेथफुल। और खुदा से कहें, खुदावंद तेरा फजल मेरे लिए काफी है, मुझे फजल में संभाले रख, दुख में, मुसीबत में, मामलात जिंदगी में। मैं जानता हूं कि मेरा इन हसार तुझ पर है और ये इस पूरे मैसेज का निचोड़ जो है वो दो बातें हैं। नंबर वन, आपके दुखों मसीही जाने, आपके दुखों के पीछे आपका खुदा है। और सेकंडली ये याद रखें, खुदा पर एतकाद करते रहें। ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम, ऑलवेज डिपेंड ऑन हिम। हम अपनी स्मार्टनेस से, अपनी विजडम से अपने माँ बाप को, अपने बहनों को, भाइयों को, रहनुमाओं को, लीडर्स को तो झूठा ठहरा सकते हैं, खुदा को नहीं। आमीन, उसे नहीं। हम कह सकते हैं कि आई नो बेटर देन यू, आई हैव मोर एक्सपीरियंस। हमने सुना है, हम बच्चों को भी यही कहते हैं कि बेटा तूने क्या देखा है। और बच्चे भी आजकल इतने तेज हैं, इतने स्मार्ट हैं, वो कहते हैं कि मामा पापा आपको क्या पता, यू डोंट नो एनीथिंग। और याद रखिए, हम तमाम एक दूसरे को ये कह सकते हैं, हम खुदा को ये नहीं कह सकते। ही नोज द बेस्ट। आमीन। तो आप उसके पास जाएं और हमेशा उस पर एतकाद रखें अपने हर फैसले से पहले। पालूस ने यीशु मसीह के पास जाना चाहा है और 3 times उसने खुदा के हजूर जाकर कहा है, खुदावन इतने मुकाशवाद दिए हैं, हर बात बताता है, हर बात सिखाता है, ये क्यों नहीं बताता कि ये मेरे साथ मामला क्यों है। Why don't you take it away? तो क्यों इसे दूर नहीं कर रहा मुझसे, मेरे वसीला से तो लंगड़े चल रहे हैं, अंधे देख रहे हैं, बड़े बड़े मौजजे हो रहे हैं, बट वाई मी, मगर मैं ही क्यों। आपने कभी सवाल, मैं सवाल करता हूं खुदावन्द वाई मी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। आप भी करते हैं, मगर उसके पास जाकर उससे कहें, खुदावन्द अगर तूने इसे नहीं ना हटाना लाइफ से तो फजल ही दे दे ताकि मैं कायम रहूं। आमीन। आइए अपने सरों को झुकाइए, आइए उसे कहें, खुदावन्द अपने फजल को उन दुखों में जाहिर कर जो तेरी तरफ से हैं, उन मसायब और मुसायल में जाहिर कर जो तेरी तरफ से हैं। खुदा मैं जानता हूं कि मैं ईमानदार हूं, मगर मैं अपनी ईमानदारी की हालत में भी खुदावंद बहुत ताकतवर होने के बावजूद भी मेरे खुदा मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं। खुदा मैं अपनी ईमानी हालत में कमजोर हूं, अपनी जिस्मानी हालत में कमजोर हूं, अपनी रूहानी हालत में कमजोर हूं, और ये जानता हूं कि मेरी कमजोरी में तू जलाल पाता है। मैं जानता हूं कि मेरी कमजोरी में तेरी कुदरत पूरी होती है। खुदा मेरा भरोसा तुझ पर रहे, मेरा एतकाद तुझ पर रहे, मेरी निगाह तेरी तरफ रहे मेरे खुदा। खुदा मैं तेरी तरफ झुका रहूं, खुदा मेरी इंक्लिनेशन तेरी तरफ से हूं, खुदा मेरा ध्यान ज्ञान तेरी तरफ हो खुदावंद। हां परमपिता तू मुझ पर रहम कर दे, मेरा भरोसा मुझ पर नहीं तेरी कुदरत पर, तुझ पर हो मेरे खुदा। और आपने देखा, आपने तजुर्बात किए हैं, जब जब हम खुद पर और अपने तजर्बात पर, अपने कामों पर बहुत एतकाद करते हैं तो हम धोखा खाते हैं। खुदा पर छोड़ दीजिए, उस पर एतकाद कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए, आपको बेहतरीन मुहैया करेगा, आपको बेहतरीन लोग देगा, आपको बेहतरीन साथी देगा। जब आप अपने तई कोशिशें करते हैं और बेजा कोशिशें करते हैं, यू गेट नथिंग आउट ऑफ नथिंग, आपको कुछ में से कुछ भी नहीं मिलेगा और कुछ नहीं से भी कुछ नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि खुदा जो है, ही सीज एवरीथिंग। जो कुछ उसने आपके लिए ठहराया, जो बरकतें, जो नेमतें, जो फजाइल उसने आपको देने हैं, उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। इसलिए भरोसा खुदा और खुदा की जात पर, एतकाद उसकी जात इलाही पर, ना किसी शख्स पे, ना किसी रानुमा पे, ना किसी खानदान पे, ना किसी बाप पे, ना किसी मां पे, ना किसी भाई पे, ना किसी बहन पे, खुदा पे और खुदा पे सिर्फ। वहीं से सब कुछ शुरू होता है। मैं गल खुदा दी सुनांगा जद करेगा कलाम, के ओ ते अपने बंदियां नाल पाक लोक नाल तमाम। क्या खुदा को मुझे और आपको दुख दे के मजा आता है? हरगिज ऐसा नहीं है। अब्लीस मुझे और आपको दुख दे के खुश होता है, मगर मेरा और आपका खुदा ऐसा नहीं करता। मेरे दुखों में वो हंसी नहीं उड़ाता, बल्कि वो दुखों में तकलीफ में से गुजरता है, मगर उससे लार्जर पर्पसेस का पता है, बड़े एजेंडास का पता है कि मेरा दुख मेरे लिए क्या कुदरत का काम कर रहा है, मुझे बचा रहा है, मुझे संभाल रहा है, मुझे बेहतर कर रहा है, मुझे सिखा रहा है। इसलिए खुदा से कहें, खुदावन तेरा फजल चाहता हूं, और फजल सारी राहें तैयार कर देता है। मुसाइब मुसाइब नहीं लगते, दुख दुख नहीं लगते, तकलीफ तकलीफ नहीं लगेगी, कांटे कांटे नहीं लगेंगे जब खुदा का फजल आएगा। किस तरह से लोग हंस के फांसियां ले गए हैं खुदा के लिए, उल्टे लटकाए गए हैं खुदा के लिए, संसार किए गए हैं खुदा के लिए, उल्टी सलीब लटका दिए गए हैं खुदा के लिए, तेल के कड़ाहों में डाला गया है, भूखे शेरों के सामने डाल दिया गया है, कैसे वो खड़े रहे? क्यों उन्होंने इनकार नहीं किया खुदा का? क्योंकि खुदा का फजल उनके साथ था। आज भी आपको संभालने वाला खुदा का फजल है। अगर दुख देता है तो फजल भी देता है मांगने वालों को। उसने 3 बार मांगा तो अल्टीमेटली खुदा ने उसे अपना फजल मुहैया किया। खुदा ने कहा, जा, मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि तेरी कमजोरी में मैं अपनी कुदरत को पूरी करता हूं। तेरा कमजोर होना जरूरी है खुदा की कुदरत के लिए। तेरा कमजोर रहना मेरी कुदरत के लिए जरूरी है, खुदा यह कह रहा है, क्योंकि खुदा मेरे बातन से बाखूबी वाकिफ है कि मैं किस कदर घुमंडी हूं। खुदा जानता है, खुदा एहतसाब का खुदा है। आप में से हर एक जो यहां पर बैठा हुआ, खुदा जानता है कि किस जगह पर कहां कहां मैं खुद पर इनासार कर रहा हूं, कहां कहां मैं होशियारी अपनी पर भरोसा कर रहा हूं, मगर खुदा जानता है, खुदा देख रहा है। खुदा कह रहा है, बेटा मुझ पर एतकाद कर, दुख दूंगा तो साथ फजल भी दूंगा, मगर जब दुनिया दुख देगी तो फजल नहीं देगी, जब दुनिया तकलीफ देगी तो फजल नहीं देगा देगी, मगर जब खुदा देगा तो आपको फजल भी देगा। हालेलुया। मैं दरख्वास्त करूंगा।